मदरसे के 19वें एपिसोड में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हर योगी की यह तमन्ना अथवा ख्वाहिश होती है कि उसे परमानंद और परम सुख की अनुभूति हो। इस अध्याय में परमात्मा यही विवरण दे रहे हैं कि योगी कौन व कैसे बन सकता है। तो आइए देखते हैं।
ओम शांति। परमात्म सुख तीनों लोकों में, चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ सुख माना जाता है। एक ओर स्वर्ग के सुख रख दिए जाएं, दूसरी ओर परमात्म मिलन का सुख हो, तो भी यही भारी पड़ेगा। इस सुख की कामना मनुष्य को लंबे काल से रही है, और जो इस सुख को एक बार चख लेता है, ये सुख उसको बार बार आकर्षित करता है। बार बार मनुष्य सोचता है कि वही सुख सर्वश्रेष्ठ सुख है। इस सुख को पाने के बाद सांसारिक पदार्थों से प्राप्त होने वाला सुख बहुत छोटा सा सुख प्रतीत होता है। गीता के 6वें अध्याय में अगले श्लोकों में 16, 17, 18, 20, 30 तक के श्लोकों में पुनः इस राजयोग की विस्तृत चर्चा है। कौन योगी बन सकता है? बार बार भगवान वही बातें हम सबके समक्ष रख रहे हैं ताकि हम उनके महत्व को समझ लें और उनको अपना जीवन बना लें, अपने जीवन में उनको उतार लें। एक बहुत बड़ी चीज तो यह है कि योग अभ्यास, जिसमें हम बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप पर लगाते हैं, मन को उसके चिंतन में लगाते हैं, ये योग अभ्यास हमें परमात्म मिलन का अनुभव कराता है। केवल उस पर एकाग्र होना नहीं, लेकिन मानो उससे हमारा मिलन हो रहा है। हम उससे बात कर सकते हैं, उससे अपने सब संबंध जोड़ सकते हैं। वो हमारा माता पिता, बंधु, सखा, परम मित्र है, सदगुरु है, परम शिक्षक है। ये नाते जोड़कर हम उसको अपने बहुत समीप अनुभव कर लेते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा आनंद प्राप्त होने लगता है, जिसको परम आनंद कहा है, जो सांसारिक आनंदों से बहुत बहुत बढ़कर है, अतिंद्रिय है। इस आनंद को पाने के बाद आत्मा शांत हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। हम देख सकते हैं हमारा मन तब तक शांत नहीं होता, वो तब तक इधर उधर भटकता रहता है जब तक उसे वो कुछ न मिल जाए जो उसे चाहिए। और आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा है परम आनंद की प्राप्ति। वो पदार्थों में आनंद ढूंढता है, वो साधनों में आनंद ढूंढता है। आजकल कोई मनुष्य टेलीविजन और इंटरनेट और कंप्यूटर में आनंद ढूंढने लगे हैं। नाच गाने में मनुष्य आनंद ढूंढता है, तो खाने पीने, पहनने, फैशन आदि में मनुष्य आनंद ढूंढता है। पर ये सब आनंद बिल्कुल नीरस प्रतीत होते हैं जब मनुष्य को परम आनंद का एक बहुत सुखद रस प्राप्त हो जाता है। एक ये बात, इसकी चर्चा बार बार आई है कि जो योगी, जो आत्मा परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो परम आनंद को प्राप्त करता है। योगी की स्थिति का वर्णन करते हुए एक बहुत सुंदर तुलनात्मक बात कही है कि जैसे किसी वायु रहित स्थान में दीपक सीधा जलता रहता, उसकी लौ सीधी रहती है, वो हिलती नहीं, वो दीपक टिमटिमाता नहीं, उसके बुझने की भी आशंका नहीं रहती, क्योंकि वहाँ वायु नहीं है। इसी तरह योगी का चित्त परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाता है, क्योंकि आत्मा भी ज्योति है और परमात्मा भी महाज्योति है। इसलिए भगवान ने ज्योति का ही उदाहरण दिया है कि इस तरह जैसे दीपक की ज्योति एक रस रहती है, स्थिर रहती है, वैसे योगी का मन भी स्थिर हो जाता है। बस बात यही है योग अभ्यास में कि एक तो हमें उसकी यथार्थ विधि मालूम हो, हमें उसके अनेक तरीके मालूम हो, क्योंकि एक विधि से किया गया योग अभ्यास कुछ समय के बाद मनुष्य के मन को बोर भी कर देता है। इसलिए योग के मनोरंजक तरीके भी हमें मालूम हो, और वो सब होते ही हैं। एक ही चीज पर केवल बुद्धि स्थिर करना लंबे काल के लिए हर मनुष्य के लिए संभव नहीं होता है। कभी हम उससे अपना कोई विशेष नाता जोड़ लें, उसको माँ बना लें, उसकी गोद में खेलें, उससे भोजन खाएं, उसकी पालना लें, उसके प्यार की अनुभूति करें। जैसे माँ और बच्चे कैसा प्यार का संबंध है, पालना का संबंध है, वही संबंध परमात्मा भी हमें अनुभव करा देता है। कभी हम उसको शिक्षक के रूप में देखें, वो ज्ञान दाता है, उसने हमें बहुत विशाल ज्ञान दिया है, उससे हम ज्ञान प्राप्त कर लें। कभी हम उसको अपना सद्गुरु बना लें और देखें कि उसका वरदानी हाथ, उसके आशीर्वाद का हस्त मेरे सिर पर है, वो मेरा परम सद्गुरु है, वो मुझे गाइड करता है क्या करो क्या न करो, किधर जाओ किधर न जाओ, किस तरह संसार में चलो, वो संपूर्ण श्रीमत देता है, उसका आनंद लें। कभी हम उसको अपना मित्र बना लें, वो खुदा दोस्त है, सुप्रीम फ्रेंड है, सच्चा मित्र है, वो बहुत अच्छी तरह से हमसे मित्रता निभाता है। कभी हम उसको मित्र बना लें, आनंद आ जाएगा जीवन में। मित्र को साथ रखें, मित्र की मदद लें, उसको मदद करें, मित्रवत हो जाएं भगवान से। ये योग के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। कभी वो महाज्योति जो परमधाम में स्थित है, ब्रह्मलोक का निवासी है, उसका आह्वान कर लें कि तुम नीचे आ जाओ और देखो कि वो हमारे सिर के ऊपर आ गया है, उसकी छत्र छाया में हम बैठे हैं। ये योग के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके हो सकते हैं। परंतु बात यही कि मन भटक जाता है। सारा दिन मनुष्य ने अपने मन को जहाँ जहाँ भटकाया हो, विषय विकारों के चिंतन में भटकाया हो, पदार्थों के पीछे भटकाया हो, इच्छाओं के पीछे भटकाया हो, काम काज में बहुत भटका दिया हो, परिवार में किसी तरह की टेंशन चल रही हो, संबंधों में किसी तरह की विकृति आ गई हो, वो सब चीज़ें मन को बार बार विचलित करके परमात्मा से नीचे ले आती हैं, बुद्धि योग को तोड़ देती हैं। बस एक ही बात बचती है कि हम ये कला सीख लें कि मन जहाँ जहाँ जाता है उसको वहाँ वहाँ से रोककर पुनः पुनः परमात्म स्वरूप पर स्थिर करें। इसके लिए हमारे पास ईश्वरीय ज्ञान का विशाल भंडार होना भी आवश्यक है। हम अपने चित्त को सबसे पहले प्रसन्न किया करें, ये ज्ञान है। ज्ञान के कुछ बातों को याद करके हम अपने मन को प्रसन्न करें, क्योंकि हम देख सकते हैं एक प्रसन्न मन, एक मन जो बहुत खुशी में रहता है, एक मन जो बहुत आनंद में आ गया हो, सहज ही शांत हो जाता है। जैसे बच्चे को, बच्चा यदि चंचलता कर रहा हो, रो रहा हो, परेशान कर रहा हो, उसके मन पसंद कोई खिलौना दे दो, कोई खाने की चीज़ दे दो, ऐसी चीज़ दे दो जिसमें वो बिजी हो जाए, तो कैसे बच्चा शांत हो जाता है। ये मन भी ऐसे ही जो चंचल है, इसको हम इसकी मनपसंद चीज़ दे दिया करें। और मन की मनपसंद चीज़ है श्रेष्ठ विचार। इसलिए वो मनुष्य, वो ज्ञानी जो श्रेष्ठ चिंतन करना जानता है, जिसका मन ज्ञान का भंडार बन चुका है, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म और स्वच्छ हो चुकी है, ऐसा योगी नए थॉट्स क्रिएट कर सकता है। और जो मनुष्य अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट कर लेता है, उसका व्यक्त चिंतन, उसके मन का भटकना लंबे काल तक के लिए स्वतः ही शांत हो जाता है। योग के द्वारा मनुष्य की बुद्धि पावन और स्वच्छ होती जाती है, ये बात इन्हीं श्लोकों में आ गई है। और स्वच्छ बुद्धि का आनंद बहुत जबरदस्त है। आज समस्त मानवता को, मानव समाज को इस बात की आवश्यकता है कि हर मनुष्य अपनी बुद्धि को स्वच्छ करे। अस्वच्छ बुद्धि में ज्ञान स्थिर नहीं रह सकता, अस्वच्छ बुद्धि हमेशा ही विचलित होती रहेगी। जो बुद्धि स्वच्छ है और भरपूर है, वही स्थिर होगी। जैसे घड़े में यदि पानी पूरा भर दिया जाए तो वो निश्चल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और यदि आधा भरा हो तो पानी उछल उछल कर बाहर गिरता रहता है, जैसे ही हम चलेंगे। तो बुद्धि को सूक्ष्म करना, बुद्धि को पवित्र करना और बुद्धि को स्वच्छ करना, ये योगी के लिए परम आवश्यक है। यद्यपि जैसे जैसे हम योग अभ्यास करेंगे, हमारी बुद्धि सूक्ष्म और पवित्र होती जाएगी, तथापि ज्ञान के द्वारा हमें अपनी बुद्धि को भरपूर करना चाहिए। क्योंकि बुद्धि ही मन पर कंट्रोल करती है। बिना ज्ञान युक्त बुद्धि के कोई व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। जितना श्रेष्ठ ज्ञान जिसके पास होगा, वो अपनी बुद्धि को वैसी ही नई दिशा दे पाने में सक्षम होगा। साथ ही साथ हमारी बुद्धि बहुत शक्तिशाली भी होनी चाहिए, क्योंकि मन को हठपूर्वक नहीं रोका जा सकता। मन को यदि हठपूर्वक रोका जाए तो जो चीजें उसमें दब जाएंगी वो फिर डबल होकर बाहर निकलेंगी और वो हमें और अधिक परेशान कर सकती हैं, विचलित कर सकती हैं, हमारी शांति को भंग कर सकती हैं। इसलिए मन को स्थिर करने का बहुत अच्छा तरीका है मन के विचारों को बदलते चलना। उसके हम कुछ यहाँ उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपका मन किसी खाने की वस्तु में जा रहा है, बार बार उसका चिंतन हो रहा है। आप इस चिंतन को परिवर्तन करें कि ठीक है, समय पर उस वस्तु को खा लेंगे, अब तो खाने का समय नहीं है, हे मेरे मन अब तुम शांत हो जा। आपका मन कुछ विषय विकारों की ओर भाग रहा है, देह की सुंदरता की ओर भाग रहा है, उसको वहां से रोको कि इस देह की सुंदरता में अटकते और भटकते हुए तो तुमने हजारों साल गंवा दिए। अब परमात्म मिलन का सुख आया है, अब आत्मा की ओर बढ़ जा, हे मेरे मन अब आत्म चिंतन में लग जा। अब तुझे परमात्म चिंतन का सुख लेना है, ये तो तूने करके देख लिया, इससे तुझे मिला ही क्या, दुख अशांति तनाव और परेशानियां, अब इनसे बाहर आ जा। अब चिंतन कर, मैं एक आत्मा हूं, मैं पवित्र हूं, मुझे महान आत्मा बनना है, मुझे शक्तिशाली बनना है, मुझे सभी दुखों से मुक्त होना है, मुझे संसार को भी दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाना है, मुझे अपनी सभी कमजोरियों को जीतकर इस संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली बनना है, मुझे इस माया को परास्त करना है। इस तरह का चिंतन प्रारंभ कर दें। कर्म आपने आज कोई किया है, उसकी सफलता असफलता, उसमें आने वाली कठिनाइयां समस्याएं आपको अब भी उलझा रही हैं, वही वही बातें याद आ रही हैं, ये हुआ वो हुआ। जब आप योग में बैठें, अब संकल्प करें कि ये आज का खेल था, ड्रामा था, पूरा हो गया, अब मुझे परमात्म मिलन का सुख लेना है। इससे आपके विचार वहां से शांत हो जाएंगे। मान लीजिए आज सारे दिन में या कल किसी व्यक्ति ने आपको बुरा भला कह दिया, संबंधों में कहीं कड़वाहट आ गई थी, आपको भी गुस्सा आ गया, आपने भी बुरा भला कह दिया, आपके द्वारा क्रोध आने पर आपको पश्चाताप हो रहा है, दूसरे के शब्द आपको बार बार याद आ रहे हैं कि उसने ऐसा कहा वैसा कहा, और बुद्धि परमात्मा में नहीं लग रही है, तो आप अपने मन से बातें करें, हे मेरे मन तू मनुष्यों की कही हुई बात का तो बार बार चिंतन कर रहा है, और जो तुझे परमात्मा ने कहा है उसे तू क्यों भूल गया, अब उसे याद कर, भूल जा मनुष्यों की बातों को। मनुष्य तो जितने मुंह उतनी बातें, कोई आपको बुरा कहेगा कोई अच्छा कहेगा, अब तो विशाल दृष्टिकोण अपना ले, और परमात्मा ने तुझे कहा है कि मान अपमान में समान हो जा, तो हर परिस्थिति में खुश रह, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, अब तुम इन बातों को जरा याद कर। तो इस तरह अपने मन को बार बार जहां भी वो जाता है उसको वहां से रोक कर आत्मचिंतन में और परमात्म चिंतन में लगाने से हमारा चित्त लंबे समय के लिए स्थिर हो जाता है। हम सारा दिन बहुत कुछ देखते हैं और बहुत कुछ सुनते हैं। हमारी दृष्टि और हमारा दृष्टिकोण हमारे मन पर सीधा प्रभाव डालते हैं, इसलिए मन बहुत भटकता है। आज मनुष्य की दृष्टि दैहिक दृष्टि हो गई है, आज उसका लक्ष्य सांसारिक हो गया है, उसकी कामनाएं भी सांसारिक हो गई हैं, उसका मोह बढ़ गया है, और अनेक घटनाओं ने उसके जीवन में दुख को बढ़ा दिया है। भगवान बार बार ये शब्द यहाँ पर बोलते हैं, जो मनुष्य पाप रहित है जो मनु संसार के सभी दुखों से मुक्त हो गया है, जो सभी में संभाव देखता है, जैसे मैं हूं वैसे ही सब हैं, ऐसी दृष्टि रखने वाला मनुष्य सहज ही मेरे स्वरूप में स्थिर हो जाता है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पर। हमारी दृष्टि सारा दिन देहिक रहती है, हम देहधारी मनुष्यों को देखते हैं। कभी कभी मनुष्य की दृष्टि कुदृष्टि भी हो जाती है, किसी सुंदरता को देखकर उसके मन में दुर्व्यसन आ जाते हैं, बुरी भावनाएं आ जाती हैं, बुरे विचार जागृत हो जाते हैं। ये विचार मनुष्य को बरबस खींच ले जाते हैं अपनी ओर और लंबे समय तक मनुष्य का योग टूट जाता है। इसलिए दृष्टि पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जो योगयुक्त होना चाहते हैं उन्हें अपनी दृष्टि को शुद्ध करना ही पड़ेगा, सिविलाई बनानी पड़ेगी। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो मनुष्य इस सारे संसार को प्रजापिता ब्रह्मा की रचना मानकर सभी को भाई और बहन की नज़र से देखें, क्योंकि सब एक ही पिता की संतान हैं और वो पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो हम भाई बहने हो गए, इससे हमारी दृष्टि वृत्ति शुद्ध हो जाएगी। या दूसरा इससे भी श्रेष्ठ तरीका है कि सभी शरीरों के अंदर आत्मा है ज्योति, परमात्मा नहीं, आत्मा ज्योति है। परमात्मा की शक्ति आत्मा को प्राप्त होती है, इसलिए आत्मा को परमात्मा की शक्ति भी कहा जाता है, कह सकते हैं। परंतु है सभी के अंदर अलग अलग आत्माएं। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं सब में एक ही आत्मा है, एक आत्मा नहीं, एक जैसी आत्मा है। अगर सब में एक ही आत्मा होती तो सभी मनुष्य एक जैसे होते, अगर सभी में परमात्मा होता तो परमात्मा का बहुत सारा स्वरूप हमें मानवता में दिखाई देता। लेकिन आज मनुष्य के अंदर तो परमात्म तत्व तो छोड़ो, मानव तत्व भी दिखाई नहीं देता, वो भी लोप हो गया है। तो हमें ये बात भूल जानी चाहिए कि कोई परमात्मा सभी के अंदर बैठा है। सभी शरीरों में अपनी अपनी आत्मा का निवास स्थान है, आत्मा प्रकृतियों के मध्य रहती है। तो जब हम दूसरों को देखते हैं, हमें इस दृष्टि से दूसरों को देख लेना चाहिए कि वो भी चमकती हुई आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं। अगर आप एक दिन ये अभ्यास करके देखो कि जो भी मनुष्य आपको मिले उसे इस दृष्टि से निहारो कि ये अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा है, परमात्मा की संतान है, यदि 10-15 बार भी आप ये अभ्यास कर लेंगे तो आपको अनुभव होगा कि चित्त शांत हो गया है। सभी आत्माएं हैं और सभी एक्टर भी हैं, एक्ट कर रही है ना आत्मा शरीर रूपी वस्त्र पहनकर, तो सभी एक्टर हैं, सभी आत्माएं हैं, सभी अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। तो आपको किसी का भी पार्ट देखकर व्यर्थ का चिंतन नहीं होगा, सब एक्टर हैं। डायरेक्टर ने जिसको जो पार्ट दिया वो एक्टर वही तो पार्ट बजाएगा, इसमें हमें क्वेश्चंस उठाने की भी जरूरत नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये आत्मिक दृष्टि बहुत सुंदर साधना है। परमात्मा के स्वरूप पर ध्यान लगाने से पहले कोई योगी यदि आत्मिक दृष्टि की साधना भी कर ले तो उसका चित्त लंबे काल तक के लिए शांत हो जाएगा। आओ हम सभी इस चीज की बहुत प्रैक्टिस करें, सभी आत्माएं हैं, इसको संभाव कहते हैं। इससे पवित्र दृष्टि बढ़ने से हमारी आंतरिक पवित्रता भी बहुत श्रेष्ठ हो जाती है। भगवान ने कह दिया है कहीं कहीं, मैं सभी के हृदय में स्थित हूं, इसका अर्थ समझना चाहिए। इसका शब्दार्थ लेने से हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, इसके भावार्थ को हमें समझना है। भगवान ने किस भाव से ये कहा है, सभी मनुष्य दिल से परमात्मा को याद करते हैं, इसको ही इस भाषा में कहते हैं कि परमात्मा सभी के दिलों में वास करते हैं, विराजते हैं। वास्तव में परमात्मा नहीं, परमात्मा की याद सभी के दिलों में विराजती है। बस इतना सा अंतर हम स्पष्ट कर लें। अगर हमारे अंदर ही परमात्मा बैठा होता तो हमें बहुत सारी कठिनाइयां न होती। हम अपने से बात करें, हमारे शरीर के अंदर कौन है, क्या भगवान बैठा है हमारे इस शरीर के अंदर? क्या मन मंदिर में परमात्मा का निवास है? आपको स्पष्ट उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका कोई भी आभास, उसकी कोई भी भासना हमारे पास कदापि नहीं होती। हमें जो अंदर से अच्छी प्रेरणाएं आती हैं, वो परमात्मा की नहीं, आत्मा की होती हैं, क्योंकि आत्मा भी मूल रूप से शुद्ध है, श्रेष्ठ है, पाप रहित है, पवित्र है। तो उसकी भी वो सुंदर फीलिंग्स मनुष्य को आती है जब कोई मनुष्य कुछ गलत काम करने के लिए जाता है, तो अंतर चेतनाओं से रोकती है कि नहीं, तुम ये न करो। कई लोग सोचते हैं ये परमात्मा का आदेश होता है, नहीं, ये आत्मा की अंत प्रेरणा होती है। ऐसे ही सभी दुखों से निवृत्त रहने वाला मनुष्य ही योग युक्त रह सकता है। यदि किसी मनुष्य की ऐसी नेचर हो गई हो कि वो छोटी छोटी बातों में दुखी होने लगे, यदि वो अपने कटु वचनों से दूसरों को दुख देने लगे, दोनों बातें हैं, तो मन अवश्य भटक जाएगा। वो मन, वो मनुष्य, वो आत्मा जो दूसरों को सदा सुख देती है और दूसरों से सुख ही ग्रहण करती है, निश्चित हो सकती है। इस संसार में दुख देने वाली बहुत सी बातें हैं। यदि हम अपने चित्त को बिल्कुल सेंसिटिव बना लें, नाजुक बना लें, और हर छोटी बात का हमें दुख होने लगे, टाइम पे भोजन न मिला तो हम दुखी, किसी ने दो बात गलत बोल दी तो हम दुखी, जरा सी बीमारी हो गई तो हम बहुत दुखी, किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी, कुछ गलत कमेंट्स कर दिए तो हमारा मूड ऑफ, हम फ्रेश ही नहीं, हम खुश नहीं, हम मानो दुखों के सागर में चले गए। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो बहुत दुखी, किसी की मृत्यु हो गई तो दुखों का मानो पहाड़ हम पर टूट गया। ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। जो हर बात को सहज भाव से रिसीव करे, बहुत इजी नेचर वाला हो जाए, सरल चित्त वाला हो जाए, ऐसा व्यक्ति ही सहज भाव से योगी बनता है, दुखों से मुक्त हो सकता है। तो हम सब इस बात पर भी ध्यान दें कि हम सुख स्वरूप होकर रहें, सुख ही दूसरों को दें और सुख की ही अनुभूति में रहें। एक लक्ष्य बना लें हम अपने जीवन का कि हमें हर परिस्थिति में भी सुखी रहना है, हर बात में सुखी रहना है, दूसरों के साथ सुखों का लेन देन करना है। बातें हम ऐसी बोलें भी नहीं दूसरे को जो उसे दुख प्राप्त हो, और इस तरह से बातों को ग्रहण भी ना करें कि छोटी बात हमारे चित्त को दुखी और परेशान करते रहे। ऐसा विशाल दृष्टिकोण, ऐसी ब्रॉडनेस ऑफ आइडियाज, ब्रॉडनेस ऑफ माइंड हम सभी को अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए, तो छोटी बातों के दुखों के प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दुख एक दिन हमें जैसे दुखों के सागर में धकेल देता है और मनुष्य हर समय दुखी रहने लगता है। ऐसे योगी के लिए एक बात और कही है, जिसे मिट्टी और स्वर्ण भी समान प्रतीत होता हो, बहुत बड़ी चीज है। भारत में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ये स्थिति पाई है, जो मिट्टी को देखकर घृणा न करे, स्वर्ण को देखकर आसक्त न हो, जो मिट्टी को मूल्यहीन और स्वर्ण को बहुत कीमती वस्तु जिसे छुपा कर रखा जाए ऐसा भाव न रखे, सहज भाव से जीवन जिए, ये सोचकर जीवन जिए कि ये पदार्थ तो केवल जीवन को चलाने के लिए हैं, ये हमारे सच्चे साथी नहीं है। आज सोना हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, आज धन किसी और के पास है, परसों वो किसी तीसरे के पास होगा। ऐसा सहज भाव, संभाव इन पदार्थों में भी रखने वाला मनुष्य सहज ही स्थिर चित्त हो जाता है। हम सब भी इन धारणाओं पर ध्यान दें और इस तरह परमात्मा के साथ रहने का अनुभव करने लगे, बुद्धि उस पर लगाएंगे तो हमें निरंतर उसके साथ रहने की अनुभूति होती रहेगी और हमारी जीवन की यात्रा में हमें ऐसा आभास होता रहेगा कि हम अकेले नहीं हैं, परमात्म शक्ति हमारे साथ काम कर रही है। वो कभी मित्र बनकर हमारे साथ है, कभी पिता बनकर हमारे साथ है, कभी माँ बनकर हमारी पालना कर रहा है, तो कभी परम शिक्षक बनकर हमें सत्य ज्ञान दे रहा है। और इस तरह आत्मा और परमात्मा का ये साथ मन उसको परम आनंद और परम सुखों की ओर ले
चलेगा। परमात्मा के स्वरूप में अर्थात उनके दिए हुए ज्ञान के स्वरूप में जब कोई आत्मा स्थित हो जाती है तो वह योगी परम आनंद और परम सुख की अनुभूति करने लगता है और अपने योगी जीवन के चरम लक्ष्य की सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी के साथ हम 19वें एपिसोड के अंत में आ पहुंचे हैं। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।
Thank you.